आकाशवाणी है। अब आप नेहा गोस्वामी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भव्य समारोह के बीच 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। देश भर के खिलाड़ियों ने एकता और खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए शानदार एथलीट परेड में भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी का सौंपा जाना था। प्रधानमंत्री मोदी को यह मशाल ओलंपियन लक्ष्य सेन ने सौंपी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में देवभूमि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पर गर्व व्यक्त किया और इसे राज्य के लिए एक ऐतिहासिक और दिव्य पल बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन राष्ट्रीय खेलों को हरित खेलों के रूप में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत की विकास गाथा में खेलों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत खेलों को अपनी विकास यात्रा का अभिन्न अंग मानता है। उन्होंने कहा कि देश तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले एक दशक में खेलों के लिए बजट 3 गुना बढ़ गया है, जिससे खेलो इंडिया जैसी पहल के तहत आधुनिक सुविधाओं का निर्माण संभव हो पाया है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत का कद बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। यह राज्य सरकार की ओर से आयोजित प्रमुख वैश्विक निवेश सम्मेलन है। इस कॉन्क्लेव का लक्ष्य ओडिशा को प्रमुख निवेश केंद्र तथा औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अनुसंधान तथा नवाचार के लिए मजबूत ढांचा तैयार करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और उद्योग जगत से अपील की है कि वे इस दिशा में सरकार के साथ सहयोग करें। 2 दिन के इस सम्मेलन के जरिए ओडिशा का लक्ष्य 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करना है। इससे रोजगार के 3.5 लाख अवसर सृजित होंगे। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले बृहस्पतिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करेंगी। प्रयागराज के महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरा अमृत स्नान होगा। पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हुआ था। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मेला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ में 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल और नो VIP जोन घोषित किया गया है। आपात स्थिति में श्रद्धालुओं की सहायता के लिए पुलिस और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी 24 घंटे तैनात है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया के देशों के साथ व्यापार संपर्क और सांस्कृतिक संबंधों में एक दशक से चली आ रही वृद्धि का उल्लेख करते हुए आज के बदलते वैश्विक परिदृश्य में इस भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री ने अबुधाबी में रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में भारत और पश्चिम एशिया के देशों के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। हाल के वर्षों में विशेषकर खाड़ी देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध काफी गहरे हुए हैं। भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार सालाना 108 से 180 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस क्षेत्र में 90 लाख से अधिक भारतीय काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को यमुना नदी पर की गई उनकी टिप्पणी के संबंध में भाजपा और कांग्रेस की ओर से दर्ज शिकायत पर नोटिस जारी किया है। केजरीवाल ने एक साक्षात्कार में आरोप लगाया था कि यमुना नदी को जहरीला बना दिया गया है। आयोग ने केजरीवाल से आज शाम 8 बजे तक साक्ष्यों के साथ शिकायत पर जवाब मांगा है। आयोग ने यह भी कहा है कि उसने दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट को पढ़ा है, जिसमें यमुना में किसी भी तरह के जहर का उल्लेख नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि जहां तक जहर के आरोपों का सवाल है तो उम्मीद है कि इसका कोई तथ्यात्मक आधार होगा। आयोग ने कहा कि ऐसे आरोपों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे क्षेत्रीय दलों और पड़ोसी राज्यों के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा हो सकती है या फिर पानी की वास्तविक या कथित कमी या अनुपलब्धता के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।